हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति। धृति अपने कपड़े कबर्ड में सेट कर रही थी जब अर्णव की आवाज उसके कानों से टकराई। उसने तुरंत ही निगाहें बेड की ओर घुमाई। आप उठ गए? धृति का पहला सवाल यही था, क्योंकि कुछ देर पहले ही अर्णव की आंख लग गई थी, तभी तो वो उठकर काम करने लगी थी। धृति का सवाल सुनकर अर्णव ने खुद से उठने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है मुझे। धृति उसको उठने की कोशिश करते देखकर सब काम छोड़कर हड़बड़ी में उसकी ओर दौड़ गई और सहारा देकर आराम से उसे उठाकर बिठा दिया। धृति, अर्णव ने एक बार फिर उसे पुकारा। धृति ने भी निगाहें उसकी ओर उठाई। कबीर को बुला दो, अर्णव के इतना कहते ही धृति ने तपाक से कहा। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम है आपको तो मुझे कहिए ना, मैं यहां आपका ख्याल रखने ही तो आई हूं। तुम नहीं कर सकोगी, कबीर को बुला दो। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकूंगी? आप बताइए तो सही, धृति ने अर्णव पर दबाव बनाया। अर्णव पल भर को परेशान निगाहों से देखता रहा, फिर भौं उछालते हुए बोला, वॉशरूम जाना है मुझे, लेकर चलोगी तुम? धृति पहले तो ये सुनकर चौंक गई, आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी, फिर अपनी बेवकूफ़ी पर एकदम से झेपते हुए उस पर से निगाहें फेर ली और सकपकाते हुए बोली, मैं बुला देती हूँ उन्हें। इतना कहकर धृति हड़बड़ी में बाहर जाने को मुड़ी, पर अब अर्णव अपना इरादा बदल चुका था। उसकी शरारत की रग भड़क उठी थी। उसने तुरंत जाती धृति की कलाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया और शरारत से मुस्कुरा दिया, रुको, वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। धृति उसकी यूं कलाई थामने से घबरा गई और उसकी ओर पलटते हुए फटी आंखों से घबराई हुई सी उसे देखने लगी। कैसा आइडिया? तुम यहां मेरा ख्याल रखने आई हो और अभी मुझे मदद की जरूरत है, तो तुम कर दो मेरी मदद। अर्णव मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराया और गहरी स्याह आंखें शरारत से चमक उठीं, पर उसकी इस शरारत ने धृति की सांसों को अटका दिया। मैं धृति आंखों की पुतलियां फैलाए बेचैनी से उसे देखने लगी। उसकी फटी आंखें और चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर अर्णव मन ही मन हंस पड़ा, पर बाहर से चेहरे पर गंभीर भाव बनाए रखे। हाँ, तुम्हारे अलावा और कोई भी है क्या यहाँ? अर्णव ने भौं से कोड़ते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर धृति हड़बड़ा गई। नहीं, वो मैं कैसे, मैं कबीर को बुला देती हूँ, वो हेल्प कर देंगे आपकी। पहले तो घबराहट में धृति की जुबान बुरी तरह लड़खड़ा गई और टूटे फूटे बिखरे शब्दों में अपनी बात कहकर अभी उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी और अर्णव ने उसे घूरा और सख्त अंदाज में बोला, मेरी वाइफ तुम हो या कबीर? जब से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, कबीर ही मेरा ख्याल रख रहा है, जबकि मेरी वाइफ होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज था, लेकिन तुम तो मेरी केयर करने, जरूरतों का ख्याल रखने की जगह बाहर बैठकर आराम फरमा रही थी और अब भी अपनी जिम्मेदारी निभाने से जी चुरा रही हो। अर्णव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए धृति को सुनाया, जिससे वो और ज्यादा घबरा गई। नहीं, वो बात नहीं, मैं तो बस, बेचारी धृति को सूझा ही नहीं कि आगे क्या कहे, जबकि अर्णव ने उसकी बात काटते हुए फैसलानुमा अंदाज में अपनी बात उसके सामने रख दी। मैं तो बस कुछ नहीं, आओ मदद करो मेरी। बेचारी धृति अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण अपनी ही कही बात में बुरी तरह फंसी। वो कहावत है ना, मरता क्या ना करता, बस वही हाल था अभी उसका। अर्णव ने उसे अपने शब्दों के जाल में बड़ी ही चालाकी से फंसा लिया था और अब मजबूरी में धृति को उसकी बात माननी ही पड़ी थी। उसने थूक निगलते हुए अपने सूखते गले को तर किया, निगाहें झुकाई और सर हिलाते हुए अर्णव की ओर झुक गई। अर्णव को थामे सहारा देते हुए वो जैसे जैसे बाथरूम की ओर बढ़ रही थी, उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। सांसें बेतरतीब हो रही थीं, कान जल उठे थे और गाल दहकने लगे थे। अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था उसे। अर्णव खामोशी से सब देख और महसूस कर रहा था और लबों पर मन स्मित सजी थी। धृति को यूं सताने में बड़ा मजा आ रहा था उसे। मैं बाहर हूँ, जब जरूरत पड़े तो आवाज़ लगा दीजिएगा, धृति ने अर्णव को अंदर खड़ा करते हुए किसी तरह बस इतना ही कहा और उल्टे पैर बाहर की ओर दौड़ गई। उसकी हड़बड़ी देखकर और चेहरा याद करते हुए अर्णव का कह कहा बुलंद हुआ था, जिसकी आवाज़ ने दूर तक धृति का पीछा किया था। बाहर खड़ी धृति ने दोनों हाथों से अपने सीने को थामते हुए अपनी आंखों को भींच लिया था और तुरंत ही बाहर भाग गई थी। कुछ देर बाद जब अर्णव ने आवाज़ लगाई तो धृति की जगह कबीर आया था और उसके बाद रात तक कबीर ही उसके साथ रहा। डिनर के वक्त भी धृति उससे नज़रें चुराती हुई नजर आई। ये लीजिए आपकी दवाई, धृति ने दवाइयां और दूध से भरा ग्लास अर्णव की ओर बढ़ा दिया। इस वक्त दोनों अपने कमरे में थे। अर्णव ने एक नज़र खुद में सिमटी हुई सकुचाती हुई अपनी बीवी को देखा, जो उससे नज़रें चुराई हुए थी, फिर चुपचाप दवाई लेकर खा ली। धृति खाली ग्लास लेकर बाहर चली गई। कुछ ही मिनट बाद लौटी और आगे बढ़कर अर्णव को सहारा देते हुए लिटाकर ठीक से कवर करके जैसे ही पीछे हटने लगी, अर्णव ने उसकी कलाई थाम ली। धृति ने चौंकते हुए निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या क्या कुछ चाहिए आपको? अपनी बिखरती सांसों को संयमित करते हुए धृति ने लड़खड़ाती जुबान में सवाल किया और जवाब बड़ा सीधा सा आया, तुम। धृति अब तो और ज्यादा चौंक गई, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बड़ा किए हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। क्या मतलब? पहले तुम बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे? बोलते हुए तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? मुझसे कतराई कतराई सी नजरें चुराते हुए क्यों घूम रही हो? कोई अनजान आवारा लफंगा को नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहा, फिर तुम मेरे साथ सहज क्यों नहीं? अर्नव हद से ज्यादा गंभीर लग रहा था, जबकि उसके सवाल सुनकर धृति ने खामोशी से अपनी आंखों पर पलकों को झालर की तरह बिछा लिया था। अर्नव ने कुछ पल जवाब का इंतजार किया, पर जब धृति की चुप्पी नहीं टूटी और लबों से एक शब्द नहीं निकला तो ठंडी आ भरते हुए अर्नव ने संजीदगी से आगे कहा, अच्छा नहीं बताना तो मत बताओ, पर यूं घबराओ भी मत मुझसे। उस वक्त मैंने बस मजाक किया था, तुमने इतने दिनों तक मुझे परेशान किया सताया, तो मैं बस तुम्हें थोड़ा सा तंग कर रहा था। आगे से मैं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं कहूंगा जिसमें तुम सहज ना हो, और तब भी बस बाथरूम तक लेकर ही तो जाना था, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि तुम मुझसे कतराई कतराई सी फिर रही हो। इसके बाद अर्नव पल भर रुका, उसके बाद उसने आगे कहा, वो सब बातें छोड़ो, चलो आओ मेरे पास लेटो। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सका, पर आज जब तुम मेरे पास हो तो आज मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अर्नव ने अपने दिल की इच्छा जाहिर की थी, उसकी आवाज में उदासी के साथ अलग ही खुशी झलक रही थी। 3 सालों की दूरियों के बाद आज अचानक अर्नव के साथ सोना धृति को थोड़ा अजीब लग रहा था, आदत जो छूट गई थी, पर इनकार करके वो अर्नव का दिल भी न दुखा सकी और हिचकिचाते हुए बोली, हाथ छोड़ दीजिए, मैं दूसरी तरफ आकर लेट जाती हूँ, इस तरह सीने पर लगा जख्म अभी ठीक से भरा नहीं है। अर्नव ने बड़ी ही आसानी से उसकी बात मान ली और उसकी कलाई छोड़ दी, साथ ही अपनी दूसरी बांह को फैला दिया। धृति झिझकते हुए उसकी बांह पर सर रखे उसके करीब ही लेट गई। अर्नव ने बांह को मोड़ते हुए उसे अपने और करीब करते हुए उसकी सर को चूम लिया। आज सालों बाद मेरे बेचैन दिल का करार मेरे पास है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। अर्नव के शब्दों में कई अनकहे से जज्बात छलक रहे थे जिन्हें धृति बखूबी महसूस कर पा रही थी। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर एहतियात के साथ अपनी बाहों को अर्नव की पीठ पर लपेट दिया। अर्नव के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई, उसने धृति के सर को प्यार से चूमते हुए अपनी आंखों को मूंद लिया। सालों बाद की इन नजदीकियों में सुकून के साथ बेचैनियां भी खुली थी, दोनों के सीने में मौजूद दिल आज एक लय से धड़क रहे थे।
देखते ही देखते कुछ दिन और गुजर गए थे। धृति अर्नव का बहुत ख्याल रखती थी, नहाने कपड़े बदलने में हेल्प कबीर करता था, बाकी उसके सारे छोटे बड़े काम धृति ही करती थी। कुछ उसकी केयर का तो कुछ उसके साथ और प्यार का असर था कि अर्नव जल्दी रिकवर कर गया था। अब उसके पैर पर लगा प्लास्टर उतर चुका था, सर और बॉडी पर लगे जख्म भी पूरी तरह से भर चुके थे, सीने पर लगा जख्म तो भर गया था पर निशान अभी बाकी था। अर्नव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अपनी नॉर्मल जिंदगी कंटिन्यू भी कर चुका था। उसके ठीक होने के बाद माधुरी सालों बाद अपने घर गई थी। कबीर मुंबई लौट गया था क्योंकि वहां भी काफी काम पेंडिंग पड़े थे। अर्नव धृति के साथ यहाँ के काम निपटाने के लिए रुक गया था। बीते वक्त में मृणाल और अर्नव की भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। कुछ तो सारा सारा दिन धृति के साथ ही रहता था। अर्नव ने इन दिनों बहुत करीब से उनके रिश्ते की गहराई को महसूस किया था। कुछ धृति के बेहद करीब था और धृति भी उससे बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रह पाना बेहद मुश्किल था। अर्नव ने भी कुछ से दोस्ती कर ली थी, इतना प्यारा बच्चा था वो कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। जब तक अर्नव ठीक नहीं हुआ था उसका कुछ से ही टाइम पास होता था। इन दिनों में अर्नव और धृति के बीच की दूरियां भी कुछ कम हो गई थीं। अर्नव की मोहब्बत को महसूस करते हुए धृति के मन की घबराहट हिचकिचाहट कम होने लगी थी। सालों की दूरियों के कारण जो झिझक पैदा हो गई थी वो मिट चुकी थी। दोनों की ठीक ठाक बातें हो जाती थीं। अर्नव उसे सताने का एक मौका नहीं छोड़ता था, वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, पर अब धृति को इस छेड़छाड़ की आदत होने लगी थी। एक अलग सा रिश्ता बन रहा था जो पहले नहीं था उनके दरमियान। कुछ अलग सी अनुभूतियों को महसूस करती थी जिनसे वो अब तक पूरी तरह से अनजान थी। जो भी था, ये वक्त बेहद खास था उन दोनों के लिए भी और उनके रिश्ते के लिए भी। अर्नव के ठीक होने के बाद दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। कुछ ही दिनों में धृति और अर्नव ने भी अब यहाँ का सारा काम समेट लिया था। अर्नव ने एक मैनेजर अपॉइंट किया था जो उस हैंडमेड कपड़ों की कंपनी को मैनेज करने वाला था। वहां काम करने वाले कारीगरों को धृति और अर्नव के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। पहले तो सब हैरान थे, पर फिर उन्होंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। अर्नव और धृति कल रात की फ्लाइट से मृणाल और कुश के साथ वापस मुंबई जाने वाले थे। उससे पहले उनकी कंपनी में उनके फेयरवेल के लिए पार्टी रखी गई थी। दोपहर का वक्त था, बीते कुछ दिनों से दोनों दिन रात काम में लगे थे, तो आज वो छुट्टी पर थे। दोपहर के लंच के बाद अर्णव ड्राइंग रूम में बैठा कबीर से बात कर रहा था, जबकि धृति उठकर कमरे में चली आई थी। कुछ देर बाद अर्णव उसे ढूंढते हुए कमरे में पहुंचा। कमरा खाली देखकर उसने बालकनी की ओर कदम बढ़ा दिए। ग्लास डोर स्लाइड करते ही नजर सामने रेलिंग के पास खड़ी धृति पर चली गई। आजकल यहाँ का मौसम कुछ बेईमान हो गया था। आज भी सुबह से काले बादल घिरे हुए थे और ठंडी हवाएं बह रही थी, पर अब बादलों की ओट में छुपा सूरज नील गगन में अपनी सुनहरी किरणों को फैलाने लगा था। हल्की गुनगुनी धूप और शीत हवाओं का बेमिसाल जोड़ था। अर्णव धृति के बगल में आकर खड़ा हो गया, पर धृति का ध्यान उस पर नहीं गया। वो वहां खड़ी तो थी, पर शायद वहां होकर भी वहां नहीं थी। अलग ही दुनिया में खोई हुई थी और चेहरे पर उलझन, परेशानी, घबराहट, डर जैसे भाव मौजूद थे। अर्णव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, शायद उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपनी बांह को उसके कंधे पर रखते हुए उसे थाम कर खुद से सटा लिया। धृति चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और सर घुमाए, आंखें फैलाए हैरानगी से उसे देखने लगी। आप यहाँ कब आए? जब तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी, वैसे मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। फिर तुम किसके ख्यालों में खोई थी कि तुम्हें मेरे आने तक का एहसास नहीं हुआ? अर्णव का सवाल सुनकर धृति के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना सर झुका लिया पर बोली कुछ नहीं। कुछ पल इंतजार करने के बाद अर्णव ने उसके कंधों को थामते हुए उसे अपनी ओर घुमाया और ठोड़ी को थामकर उसके चेहरे को ऊपर किया और बेहद नरमी से उससे मुखातिब हुआ। धृति, क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान और घबराई हुई लग रही हो। अब तो सब ठीक है, फिर ऐसी कौन सी बात है जो अभी तुम्हें इतना इफेक्ट कर रही है? जो भी प्रॉब्लम है बेझिझक मुझसे शेयर करो। धृति ने हौले से अपनी पलकें उठाई। उसकी गुलाबी आंसुओं से भीगी आंखें देखकर अर्णव के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और वो कुछ परेशान व बेचैन हो गया। धृति के खामोश लब फड़फड़ाए और धीमी सी आवाज फिजाओं में गूंजी उठी, अर्णव जी, मैं घर नहीं जाना चाहती। धृति के शब्द अर्णव के होश उड़ा गए। उसकी बात सुनकर वो बुरी तरह चौंक गया। टू बी कंटिन्यूड। क्यों कहा धृति ने ऐसा?